रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। जन अपेक्षा के अनुरूप विकास और समृद्धि के लिए भ्रष्टाचार नियंत्रण अनिवार्य है, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का कथन। चलचित्र विधेयक 2081 राष्ट्रीय सभा से पारित। आर्थिक लाभ न देने वाली छोटी छोटी परियोजनाएं ही रोकी गई हैं, अर्थमंत्री रामेश्वर खनाल द्वारा स्पष्ट। और कनाडा में हुई गोलीबारी की घटना में कम से कम 9 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा है कि अख्तियार अधिकार के दुरुपयोग को सामान्य त्रुटि नहीं माना जा सकता, बल्कि ये राज्य की वैधानिकता और सामाजिक न्याय के लिए गंभीर चुनौती है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के 35वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि आयोग को इस तरह काम करना चाहिए कि आम नागरिकों में ये विश्वास बने कि शक्ति और पद के आधार पर कोई भी व्यक्ति कानूनी जवाबदेही से मुक्त नहीं हो सकता। राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि जनता की अपेक्षा अनुसार विकास और समृद्धि हासिल करने के लिए अख्तियार के दुरुपयोग का अंत और भ्रष्टाचार नियंत्रण अनिवार्य है। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा कि देश में सुशासन, विकास और समृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार नियंत्रण अनिवार्य शर्त है। प्रधानमंत्री कार्की ने जानकारी दी कि नेपाल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई प्रतिबद्धताओं के अनुरूप भ्रष्टाचार विरोधी दूसरी रणनीति योजना निर्माण के अंतिम चरण में है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राय ने देश में भूमि और राजस्व प्रशासन में बढ़ती विकृतियों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति के दोहन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता बताई। प्रमुख आयुक्त राय ने कहा कि भ्रष्टाचार की दृष्टि से उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में आयोग प्राथमिकता के साथ जांच और अभियोजन कर रहा है। आयोग के 35वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रमाण पत्र और 35,000 रूपये की नकद राशि सहित उत्कृष्ट अख्तियार सेवा पुरस्कार और उत्कृष्ट अन्वेषक पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में चलचित्र विधेयक 2081 पारित किया गया। प्रधानमंत्री एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री सुशीला कार्की की ओर से महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री श्रद्धा श्रेष्ठ द्वारा प्रस्तुत विधान व्यवस्थापन समिति की रिपोर्ट सहित चलचित्र विधेयक 2081 को सभा ने सर्वसम्मति से पारित किया। बैठक में विधान व्यवस्थापन समिति की सभापति तुलसा कुमारी दाहाल ने समिति का आर्थिक वर्ष 2081-82 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के समक्ष पेश किया। इससे पहले बैठक में सांसदों ने निर्वाचन सुरक्षा, कालाबाजारी नियंत्रण और सड़क सुरक्षा जैसे विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। सदन के शून्य समय में सांसदों ने फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के निकट आते ही विभिन्न घटनाओं में वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए स्वतंत्र और भयमुक्त माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने चुनाव के दौरान दैनिक उपभोग्य की वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा किए जाने का आरोप लगाते हुए उनकी निगरानी करने तथा मूल्य वृद्धि और कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक फागुन 1 गते अपराह्न 12:15 पर बुलाई गई है। अर्थमंत्री रामेश्वर प्रसाद खनाल ने कहा है कि केवल वे छोटी और बिखरी परियोजनाएं रोकी गई हैं जो तत्काल आर्थिक लाभ नहीं देती थी। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में सांसदों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने विकास निर्माण परियोजनाओं को स्थगित किए जाने के विषय में स्पष्ट किया कि पर्याप्त तैयारी न होने तथा समष्टिगत रूप से बजटीय दबाव और प्राथमिकताओं के पुनर्संरचना के कारण ये निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने सदन को जानकारी दी कि आंदोलन से क्षतिग्रस्त संरचनाओं के पुनर्निर्माण, सार्वजनिक सेवाओं के पुनः संचालन, राष्ट्रीय सभा और प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन संपन्न कराने के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था, चालू तथा महत्वपूर्ण परियोजनाओं में कम विनियोजन के कारण उत्पन्न दायित्वों के भुगतान, आर्थिक पुनरुत्थान तथा घायलों और शहीद परिवारों को राहत उपलब्ध कराने की जिम्मेदारियों के कारण बजट पर दबाव बढ़ा है। मंत्री खनाल ने यह भी बताया कि जिन परियोजनाओं का डिजाइन, लागत अनुमान और टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है या जो उपभोक्ता समितियों के साथ समझौता कर क्रमागत रूप से आगे बढ़ रही है, उन्हें संबंधित मंत्रालय की पुष्टि के आधार पर चरणबद्ध तरीके से फिर से मंजूरी दी जा रही है और कई परियोजनाओं की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। इसी बैठक में मंत्री खनाल ने यह भी जानकारी दी कि दलित समुदाय के अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दलितों के हक अधिकार तथा विकास संबंधी विधेयक के मसौदा निर्माण की प्रक्रिया को तीव्र किया गया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। आगामी फागुन 21 को होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए 53 जिलों के 177 निर्वाचन क्षेत्रों के मतपत्रों की छपाई पूरी हो चुकी है। ये जानकारी निर्वाचन आयोग ने दी। आयोग के सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसी ने बताया कि आज तक 1,50,00,000 से अधिक मतपत्र छापे जा चुके हैं। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड सानोठीमी में समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत होने वाले चुनाव के लिए गत पूस 22 गते से मतपत्र छपाई शुरू की गई थी। आयोग के अनुसार पहले चरण में 10,98,200 नमूना मतपत्र छापकर विभिन्न जिलों में भेजे जा चुके हैं। आयोग ने यह भी बताया कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत चुनाव के लिए कुल 2,03,23,000 मतपत्र छापने होंगे। प्रधान सेनापति अशोक राज सिग्देल ने एकीकृत सुरक्षा योजना 2082 के अनुसार निर्वाचन को सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने का निर्देश किया है। जंगी अड्डा में आयोजित प्रतिनापति समन्वयात्मक बैठक के आज समापन अवसर पर प्रधान सेनापति सिग्देल ने अन्य सुरक्षा निकायों तथा सभी संबंधित पक्षों के साथ समन्वयात्मक रूप से कार्य करते हुए आगामी फागुन 21 गते होने वाले निर्वाचन को सुरक्षित रूप से संपन्न कराने का निर्देश किया। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी के संयोजक पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा है कि निर्धारित तिथि पर ही चुनाव होगा, इसलिए सभी को निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जुटने का निर्देश दिया है। पोखरा में आज आयोजित पार्टी की जिला स्तरीय कार्यकर्ता सभा को संबोधित करते हुए संयोजक प्रचंड ने कहा कि चुनाव होगा या नहीं, इस दुविधा से मुक्त होकर प्रचार प्रसार अभियान में सक्रिय रूप से लगना चाहिए। उन्होंने जनजी आंदोलन के बाद देश में विकसित असाधारण परिस्थितियों के बीच होने जा रहे इस चुनाव में अपने अपने स्थान से आज से ही सक्रिय रूप से जुटने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव जापान के सम्राट नारुहितो के 66वें शुभ जन्मोत्सव तथा नेपाल जापान के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर काठमांडू स्थित जापानी दूतावास द्वारा आज आयोजित स्वागत समारोह में शामिल हुए। उस अवसर पर नेपाल के लिए जापानी राजदूत मेइदा तोरू ने कहा कि जापान के सम्राट महारानी और प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की मुलाकात से दोनों देशों के संबंधों के और विस्तार में योगदान मिला है। स्वास्थ्य सेवा विभाग ने जानकारी दी है कि सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध एचपीवी टीकाकरण अभियान 56 जिलों के 493 स्थानीय तहों में संचालित किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा विभाग के बाल स्वास्थ्य तथा टीकाकरण शाखा प्रमुख डॉ अभियान गौतम ने बताया कि हिमालयी और पहाड़ी क्षेत्रों के 21 जिलों को छोड़कर अन्य 56 जिलों के 493 स्थानीय निकायों में ये अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यद्यपि टीकाकरण अभियान माघ 25 गति से शुरू हो चुका है, लेकिन अत्यधिक ठंड और हिमपात होने वाले हिमालय और पहाड़ी जिलों में ये अभियान चैत महीने से संचालित किया जाएगा। डॉ गौतम के अनुसार 20 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के दौरान लगभग 3,50,000 बच्चों को सर्वाइकल कैंसर के विरूद्व एचपीवी टीका लगाया जाएगा। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन के कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक खरीद व्यवस्थापन संबंधी 3 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण आज से सिंहदरबार में शुरू हुआ है। सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय के सहयोग से आयोजित इस प्रशिक्षण में रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन के 35 कर्मचारी भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण में सार्वजनिक खरीद की कानूनी व्यवस्था, योजना निर्माण, लागत अनुमान, खरीद प्रक्रिया, टेंडर प्रक्रिया, दस्तावेज तैयारी तथा अनुबंध प्रबंधन सहित सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न विषयों पर सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय के पदाधिकारी प्रशिक्षण देंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पश्चिमी कनाडा में हुई शूटिंग की घटना में कम 9 लोगों की मौत हो गई है। रॉयल कैनेडियन पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तरी पूर्वी ब्रिटिश कोलंबियन के ट्रम्बल रीड सेकेंडरी स्कूल में 6 लोगों की लाश मिली है। वहीं एक अन्य व्यक्ति की अस्पताल में ले जाने के दौरान मौत हुई है। पुलिस ने कहा है कि एक अन्य स्थान पर 2 लोगों के शव मिले हैं। पुलिस का मानना है कि ये भी उसी घटना से जुड़े हुए हैं। वहीं लगभग 25 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक एक और व्यक्ति की लाश मिली है जिसके बारे में माना जा रहा है कि वो शूटर था। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जन अपेक्षा के अनुरूप विकास और समृद्धि के लिए भ्रष्टाचार नियंत्रण अनिवार्य है, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का कथन। चलचित्र विधेयक 2081 राष्ट्रीय सभा से पारित। आर्थिक लाभ न देने वाली छोटी छोटी परियोजनाएं ही रोकी गई हैं, अर्थमंत्री रामेश्वर खनाल द्वारा स्पष्ट। और कनाडा में हुई गोलीबारी की घटना में कम 9 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।